पृष्ठ संख्या 117, राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा की बहुत प्रशंसा हुई है, उसके शब्द कौशल की, उसकी ओजस्विता की, उसके प्रगाढ़ संश्लिष्ट शिल्प और कथन संक्षिप्तता की। आचार्यों और विश्वविद्यालयीय आलोचकों ने उसके वीर रस की, राम के चरित्र चित्रण की, उनकी धीरता गंभीरता की बड़ी बड़ी तारीफें की हैं। अक्सर विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को यह कविता वीर रस और चरित्र चित्रण के नज़रिए से ही पढ़ाई जाती है। विद्यार्थियों और उनके गुरु उसकी समासिकता में ओज गुण की सराहना करते हुए अलंकारों की खोज में सिर मारते बार बार चमत्कृत होते रहते हैं। विद्यार्थियों पर बड़ी आसानी से इसकी भाषा का खौफ हावी हो जाता है और निराला के संपूर्ण व्यक्तित्व को न समझते हुए एक अजीब से डर में आकर इस कविता के साथ ही वह कवि का भी लोहा मानकर उसे साष्टांग दंडवत करते हैं। यह प्रसंग उद्धृत करना बहुत जरूरी था, उससे कई बातें साफ होती हैं। पहली बात तो यह कि राम की शक्ति पूजा की जितनी भी व्याख्या, आलोचना या जितना भी विश्लेषण अभी तक प्रस्तुत हुआ है, उसकी जितनी भी तारीफ हुई है, वह निहायत परंपरागत ढंग और शास्त्रीय शब्दावली में हुई है। यह तथ्य इस बात का संकेतक है कि राम की शक्ति पूजा को एक पारंपरिक रचना मान लिया गया है। वह वीर रस की रचना है, उसमें उदात्त वीर पुरुष राम का चरित्र चित्रण है। वह संपूर्ण लंका कांड की संक्षिप्तम और सुघड़तम व्यक्ति है। उसमें महाकाव्य की क्लासिक शैली और ओजस्वी भाषा का अद्भुत समन्वय और निर्वाह हुआ है। वह अपने सारे विधान में एक संश्लिष्ट और पूर्ण क्लासिक प्रबंध रचना का अद्वितीय उदाहरण है। उसमें असत शक्तियों पर सत की विजय का सफल निर्वाह है। वह अपनी संक्षिप्तता में भी एक प्रबंध रचना है और निराला के प्रबंध स्थापत्य का अद्वितीय नमूना है। उसमें अलंकारों, रसों, मानवीय भावनाओं, उद्दीपन, आलंबन, रीतियों का अद्भुत समन्वय हुआ है, आदि आदि। या किसी एक आलोचक प्रवर या अध्यापक प्रवर की वाणी का उदाहरण मैंने प्रस्तुत नहीं किया है। यह अधिकांश ऐसी वाणियों का सार सार है। इसमें अधिक अगर कुछ हुआ तो विशंभर मानो जैसे सतही कुंजी लेखक इस पर बंगला के कृतिवास रामायण की छाया या नकल ढूंढकर अपनी खोज पर गदगद होते रहते हैं। राम की शक्ति पूजा को लेकर नासमझी भरे प्रशस्त वाक्यों का जो अंबार लगाया गया है, उसका अधिकांशतः सार संक्षेप यही है। उसे पारंपरिक प्रबंध रचना पृष्ठ संख्या 118 के सफल निर्वाह के रूप में पारंपरिक काव्य शास्त्रीय शब्दावली में ही अधिक देखा परखा गया है। हिंदी आलोचकों की लाला भगवान दीन की यह पीढ़ी महान है जो अधिकांश विश्वविद्यालयों में शोभा बढ़ाती हुई हिंदी आलोचना को बड़े सुचारू ढंग से आगे बढ़ा रही है, शोध प्रबंध लिखवा रही है और विद्यार्थियों को गुमराह और पस्त करके साहित्य के प्रति उनके मन में एक खौफ, एक अरुचि और एक अजीब ढंग की नफरत पैदा करके स्वयं धन्य धन्य हो रही है। बहरहाल, मैंने इस निबंध में शुरू में कहा है कि यदि किसी प्रबंध रचना में सिर्फ परंपरागत आदर्शों का निर्वाह भर है, तो यह उस रचना के लिए आज कोई प्रशंसा या उपलब्धि की बात नहीं है, बल्कि उल्टे यह उस रचना का दुर्गुण माना जाएगा। वह मात्र पृष्ठपेषणता होगी, उससे कवि की मौलिकता पर ही प्रश्नवाचक लग जाएगा। ऐसी रचनाएं करके कोई भी कवि सिर्फ अनुगामी हो सकता है, मौलिक वाग्मिता और रचनात्मकता का उद्भावक नहीं। इस नुक्ते की व्याख्या हम इस निबंध के शुरू के हिस्से में कर चुके हैं। अतः यदि राम की शक्ति पूजा सिर्फ एक परंपरित रचना है, यदि उसकी तारीफ मात्र उपर्युक्त ढंग से ही की जा सकती है, यदि उसके महत्व, उसकी गरिमा और सफलता की सीमा यही है, तो यह कविता सिर्फ पृष्ठपेषणता का उदाहरण होगी। निराला की किसी भी रचना को अनुगामीपन का उदाहरण सिद्ध करना, चाहे वह कितने भी परोक्ष ढंग से क्यों न हो, निराला की संपूर्ण रचनात्मकता का अपमान करना है। यदि अज्ञेय मुक्तिबोध अथवा रघुवीर सहाय की कविताओं को कोई रस अलंकार रीत सिद्ध रचनाएं बताकर उनकी तारीफ करते न अघाए तो आप उसे क्या समझेंगे? और अज्ञेय या रघुवीर सहाय को कैसा महसूस होगा? क्या अज्ञेय और रघुवीर सहाय आपको डंडा लेकर दौड़ा नहीं लेंगे, या आपके इस हास्यास्पद प्रयत्न पर सिर्फ मुस्कुराकर चुप रह जाएंगे? लेकिन सवाल यह है कि इस तरह के आलोचकों को निराला ने क्यों नहीं दौड़ाया? वह तो अक्सर दौड़ा लेते थे। इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। एक तो उनका लगातार विरोध। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने भी पंत की तुलना में उन्हें बड़े ही चलते ढंग से अपने इतिहास में याद किया है। इसके लिए निराला ने शुक्ल जी को छोड़ा नहीं। सन 28 की समालोचना पत्रिका में शुक्ल जी और आलोचक प्रतिभा पर एक लेख लिखकर उन्होंने शुक्ल जी को अच्छी तरह दौड़ाया है। ऐसी स्थिति में पारंपरिक ढंग से ही सही जो भी व्याख्या उनके पक्ष में उनकी प्रशंसा में होती थी, निराला के आहत मन और छत बिछत अहम को थोड़ी राहत मिलती थी। उन्हें लगता था कि उन्हें भी चाहने वाले समझने वाले कुछ लोग हैं। उनके भी इर्द गिर्द एक समाज, एक सुरुचि संपन्न पाठकों का दल धीरे धीरे संगठित हो रहा है। पृष्ठ संख्या 119। अपनी तारीफ दुनिया के हर लेखक की सबसे बड़ी कमजोरी है। फिर जिसका लगातार विरोध होता रहा हो, उसे थोड़ी सी भी तारीफ मिले तो वह गदगद हो जाता है। और निराला तो फिर भी अत्यंत भावुक मन, असंतुलित प्रकृति के व्यक्ति थे। उनका गुस्सा और उनका प्यार अतिवादी सीमाओं को हमेशा छूता था। गांधी, नेहरू हो या पंत, इलाचंद्र जोशी या रविंद्रनाथ या रामचंद्र शुक्ल, ज्योति प्रसाद मिश्र, निर्मल या भुवनेश्वर, जिसने भी जाने अनजाने उनका विरोध किया, उन्होंने ले दौड़ाया। लेकिन अगर उन्हीं ने उन्हें जरा भी स्नेह दिया, वे फिर कातर, गदगद, करुण और अति विनम्र हो गए। जिन रामचंद्र शुक्ल को उन्होंने अपने लेख में इतना गलियाया, उन्हें उन्होंने फैजाबाद साहित्य सम्मेलन में जबरदस्ती राजनीतिज्ञों को कुर्सी से हटाकर सभापति के पद पर ला बिठाया। उन्हीं पर निराला ने हमारे कॉलेज के बचुआ कहकर एक कविता लिखकर मजाक उड़ाया, और उन्हीं पर अरिमा में उन्होंने प्रशस्ति कविता भी लिखी। पंत को पल्लव वाले लेख में समूल नष्ट करने का बीड़ा उठाया, और उन्हीं को परिमल की भूमिका में समवायः सखा मता और एक क्रियम भवेन मित्रम कहकर याद किया है। उन्हें जरा सी भी सहानुभूति आर्द्र और गदगद कर जाती थी। शायद इसी मना स्थिति के कारण उन्होंने अपनी निरर्थक और गलत प्रशंसाएं भी स्वीकार कर लीं। अगर शुक्ल जी जैसे आलोचक ने उन्हें सही संदर्भों में व्याख्यायित विश्लेषित किया होता तो उन्हें जानकी वल्लभ शास्त्री या गंगा प्रसाद पांडे की जरूरत ना पड़ती। इसीलिए उन्होंने अपनी कविता की सीमा रेखा बांधने वाले या उसकी गलत प्रशंसा करने वाले आलोचक को अपनी परिचित शैली में द्याखो चू डॉट डॉट कहकर दौड़ाया नहीं। यह तो हुई एक प्रकार से निराला की मानसिक स्थिति की खोजबीन। दूसरे, यह भी हो सकता है कि इस तरह की पारंपरिक व्याख्याओं से निराला को सुख मिलता हो। मेरे गीत और कला में जहाँ उन्होंने जूही की कली या सखी वसंत आया में एक बंद का अर्थ किया है, उसकी भाषा और उसका टोन निहायत पारंपरिक ढंग का है। शायद राम की शक्ति पूजा को लेकर प्रबंध निर्वाह की पारंपरिक सफलता की उद्घोषणा की जाती होगी तो निराला के आहत अहम को यह भी तुष्टि मिलती होगी कि उन्हें व्यास, वाल्मीकि और तुलसीदास की कतार में रखा जा रहा है। शायद प्रसाद के लिए उनके मन में इतना आदर भाव उनकी प्रबंध रचना को लेकर ही है। मुझे तो कभी कभी यह भी लगता है कि राम की शक्ति पूजा में जिस शब्द बंध का उपयोग और सृजन उन्होंने किया है, वह विषय वस्तु और उसकी रचना के अनुकूल और उसके लिए आवश्यक ही क्यों न हो, उसमें थोड़ा सा अंश अपनी प्रतिभा और कल्पना ऊर्जा का जौहर दिखाने के लिए भी, अपने विरोधियों के सामने यह प्रदर्शित करने के लिए कि जो निराला मुक्त छंद के आविर्भाव और प्रयोग द्वारा हिंदी कविता में क्रांति ला सकता है और रबर छंद का रचयिता। पृष्ठ संख्या 120। कहकर जिसकी तुम खिल्ली उड़ाते हो, वह सब कुछ भी कर सकता है। जो तुम्हारी नज़र में ऊंची कविता है, महान रचना है, और उसे भी वह तुमसे बेहतर ढंग से कर सकता है। अगर ये बातें सच नहीं हैं और निराला ने सचमुच इसे उसके प्रथम विवरणात्मक अर्थ में ही रचा है, तो वह कविता कोई खास ऊंची कविता नहीं है। तब तो उसमें बस इतना ही है कि रावण से युद्ध करते हुए लगातार अपने मजबूत अस्त्रों को असफल होते देख राम खिन्न हो जाते हैं। उन्हें पराजय की शंका घेर लेती है। उनकी सारी सेना और सैनिक अधिकारी उनके इर्द गिर्द उनकी खिन्नता में हिस्सा लेते हुए स्तब्ध बैठे हैं। राम को सीता के प्रथम मिलन की बात याद आती है। वह फिर विजय की आकांक्षा से उद्वेलित होते हैं, लेकिन यह जानकर कि शक्ति मती दुर्गा रावण के साथ हैं, उनकी आँखों से दो बूंद आंसू टपक पड़ते हैं। उन आंसुओं को लक्ष्य करके स्वामी भक्त हनुमान अत्यंत उत्तेजित होकर आकाश में चढ़ जाते हैं और सूर्य को निगलने के लिए तत्पर होते हैं। अंततः अपनी माँ की डांट खाकर वह नीचे उतर आते हैं और फिर वैसे ही राम के चरणों में बैठ जाते हैं। फिर जामवंत की सलाह पर राम शक्ति की आराधना में लगते हैं और लड़ाई उनकी सेनाएं तब तक लड़ती हैं। अंतिम दिन दुर्गा उनकी परीक्षा लेने के लिए पूजा का अंतिम कमल उठा ले जाती हैं। राम उसे ना पाकर पहले तो खिन्न होते हैं, फिर अपनी माँ द्वारा दिया गया नाम राजीव नयन उन्हें याद आता है। वे अपना एक नेत्र पूजा में चढ़ाकर आराधना पूरी करना चाहते हैं। पुरानी कहानियों की तरह जब राम अपनी आँख निकालने के लिए लकलक करता तीर हाथ में लेते हैं, तो उनकी परीक्षा पूरी होती है। स्वयं दुर्गा उनका हाथ पकड़ लेती हैं और उन्हें विजय का वरदान देकर उनके बदन में समा जाती हैं। इस कथा का अगर इससे इतर कोई अर्थ नहीं है, तो इसका प्रभाव क्षेत्र बहुत सीमित हो जाएगा। इस पर वही यकीन करेंगे जो रोहितश्व के जिंदा होने या राजा बलि के पाताल लोक में धंसने की घटनाओं को अक्षरशः सही मानते हैं। यह कौन सी पब्लिक होगी, इसका अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। और यह तो मैं कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ऐसी पब्लिक के लिए उन्होंने इतनी ओजस्वी भाषा में यह कथा कही, रची नहीं। अतः परंपरित अर्थ में इसकी व्याख्या निश्चय ही बेमानी है, क्योंकि तब तो सीता की स्मृति वाला प्रसंग बिल्कुल उद्दीपन अर्थ में नियोजित लगता है। मानो राम के संशय और खिन्नता और पराजय के डर के पीछे मूल कारण सीता ही हैं। फिर तो राम का यह चरित्र तुलसीदास के राम से भी पीछे जाता है। जहाँ किसी भी बड़े युद्ध के पीछे मुख्य कारण स्त्री ही होती थी, चाहे वह सीता हो, द्रौपदी या हेलेन, क्योंकि तुलसीदास के राम तो जानते ही हैं कि यह सब होगा। ऐन मौके पर कैकेयी पृष्ठ संख्या 121 मत फिर जाएगी, दशरथ की मृत्यु होगी, उन्हें वन जाना पड़ेगा। उन्हें यह भी मालूम है कि उन्हें हेममृग के पीछे सीता भेजेंगी और फिर उनका हरण होगा।